अध्याय एक दृष्टांतों में अध्यापन। मसीह के दृष्टांत में उसी सिद्धांतों को सिखाते हैं जो दुनिया के अपने मिशन के रूप में देखा जाता है, कि हम उनके दिव्य चरित्र और जीवन से परिचित हो सकते हैं। मसीह ने हमारे स्वभाव को ग्रहण किया है और हमारे बीच में रहने लगे। मानवता में देव तत्व का पता चला। दृश्यमान मानव रूप में अदृश्य महिमा। पुरुष ज्ञात के माध्यम से अज्ञात के बारे में जान सकता था। सांसारिक चीजों का पृथ्वी के माध्यम से पता चला था। पुरुषों की समानता में ईश्वर को प्रकट किया गया था। इसलिए ये मसीह के शिक्षण में हैं। अज्ञात को अज्ञात द्वारा चित्रित किया गया था। सांसारिक बातों से दिव्य सत्य, जिसके साथ लोग सबसे परिचित थे। शास्त्र कहता है, ये सभी चीजें यीशु को बहुराशियों के दृष्टांतों के लिए उकसाती है कि ये पूरी हो सकती है जो नबी द्वारा बोली गई थी। कह रही है, मैं दृष्टांतों में अपना मुंह खोलूंगा। मैं उन चीजों का उच्चारण करूंगा जिन्हें गुप्त रखा गया है। दुनिया की नींव से मत्ती 13 आयत 34-35। प्राकृतिक चीजें आध्यात्मिक के लिए माध्यम थी। प्रकृति की बातें और उनके श्रोताओं का जीवन अनुभव लिखित शब्द की सच्चाइयों से जुड़ा था। इस प्रकार प्राकृतिक से आध्यात्मिक राज्य की ओर ले जाना। मसीह के दृष्टांत सत्य की श्रृंखला में जुड़े हैं, जो मनुष्य को ईश्वर के साथ और स्वर्ग के साथ पृथ्वी की एकजुट करते हैं। प्रकृति से अपने शिक्षण में मसीह उन चीजों के बारे में बात कर रहे थे जो उनके अपने हाथों ने बनाई थी और जिनमें वो गुण और शक्तियां थीं जिन्हें उन्होंने स्वयं ही आरंभ किया था। अपनी मूल पूर्णत में सभी ने ऐसी शक्तियां बनाई जिन्हें उसने स्वयं धारण किया था। अपनी मूल पूर्णता में सभी निर्मित चीजें ईश्वर के विचार की अभिव्यक्ति थी। आदम और हवा में अपने अदन के घर में ईश्वरीय विचार के साथ ईश्वर के ज्ञान से भरा था। बुद्धि ने आंख से बात की और दिल में प्राप्त हुई, क्योंकि उन्होंने बनाए कार्यों में परमेश्वर के साथ साम्य किया था। जैसे ही पवित्र जोड़ी ने परमेश्वर के नियम का उल्लंघन किया, ईश्वर के चेहरे की चमक प्रकृति के चेहरे से चली गई। पृथ्वी को अब पाप द्वारा मार डाला गया और अपवित्र कर दिया। फिर भी अपनी खिलखिलाती हुई अवस्था में भी ये सुंदर अवशेष है। ईश्वर के वस्तुपाठ को तिरस्कृत नहीं किया जाता है, ठीक ही समझा जाता है। प्रकृति उसके निर्माता की बात करती है। मसीह के इन दिनों में इन पाठों की दृष्टि खो गई थी। पुरुषों ने अपने कामों में ईश्वर को समझना बंद कर दिया था। मानवता के पापीपन ने सृजन के निष्पक्ष चेहरे पर एक पल्लड़ा डाला था और ईश्वर की महिमा करने के बजाय उनकी रचनाएं एक बाधा बन गईं जिसने उसे छुपा दिया। पुरुष सृष्टिकर्ता से अधिक प्राणी की पूजा और सेवा करने लगे। इस प्रकार मूर्ति पूजा उनकी कल्पनाओं में व्यर्थ हो गई और उनका मूर्ख लक्ष्य काला हो गया। रोमियो 1 आयत 25-21 आयत 1। इसलिए परमेश्वर के स्थान पर मनुष्य की शिक्षा दी गई थी, न केवल प्रकृति की चीजें बल्कि बलिदान, सेवा और स्वयं पवित्र शास्त्र, सभी को ईश्वर को प्रकट करने के लिए दिए गए इतने विकृत कि वे इसे छुपाने के साधन बन गए। मसीह ने उस सच्चाई को दूर करने की कोशिश की। वह घूंघट जिस पाप ने प्रकृति के चेहरे पर डाल दिया है, वह एक तरफ आकर्षित होने के लिए आया, आध्यात्मिक गौरव को देखने के लिए कि सभी चीजें प्रतिबिंबित करने के लिए बनाई गई थीं। उनके शब्दों ने प्रकृति की शिक्षाओं के साथ साथ बाइबल को भी नए सिरे से पेश किया और उन्हें एक नया रहस्योद्घाटन किया। यीशु ने सुंदर सोसन को तोड़ा और उसे बच्चों और युवाओं को दिया, और जैसे कि उन्होंने स्वयं को युवा चेहरे में देखा, अपने पिता की ताजा प्रतिभा को और धूप के साथ उन्होंने उन्हें सबक दिया। क्षेत्र की सूसन पर विचार करें, वे कैसे बढ़ते हैं। प्राकृतिक सुंदरता परिश्रम की ताजगी में। वे न तो परिश्रम करते हैं न ही वे स्पिन, और फिर भी मैं तुमसे कहता हूं कि उसकी महिमा में भी सुलेमान को एक की तरह नहीं बनाया गया था। फिर मीठे आश्वासन और महत्वपूर्ण सबक का पालन किया। यदि ऐसा है तो यदि ईश्वर ने खेत की घास को जोता है जो आज है कल आग में झोंके जाते हैं, क्या वो तुम्हें कपड़ों से नहीं ढांकेगा? क्या तुम विश्वास में कमजोर हो गए? पर्वत पर उपदेश में यह शब्द बच्चों और युवाओं के अलावा दूसरे से भी बोले गए थे। वे उस भीड़ से बातें करते थे जिनके मन में चिंता दबित गायें थी और वो निराश और दुखी थे। यीशु ने जारी रखा, इसलिए बिना सोचे समझे यह कहते हुए कि हम क्या खाएंगे या हम क्या पिएंगे या हम क्या कपड़े पहनेंगे, इन सब चीजों की अन्य जातियों को तलाश है। अपने स्वर्गीय पिता जानते हैं कि तुम्हें इसकी आवश्यकता होगी। इन सभी चीजों की फिर अपने हाथों को आसपास की भीड़ में फैलाते हुए उन्होंने कहा, लेकिन तुम पहले परमेश्वर के राज्य की तलाश करो और धार्मिकता की, फिर ये सब तुम्हें दिया जाएगा। मत्ती 6 आयत 28 से 33। इस प्रकार मसीह ने उस संदेश की व्याख्या की जो उसने स्वयं गेंदे और खेत की घास को दिया था। वह चाहता है कि हम हरेक गेंदे और घास के तिनके में पढ़ें। उसके शब्द आश्वासन से भरे हैं और ईश्वर में विश्वास की पुष्टि करते हैं। सत्य के प्रति मसीह का दृष्टिकोण व्यापक था, इसलिए उन्होंने अपने शिक्षण को बढ़ाया कि प्रकृति के प्रत्येक चरणों को सचित्र चित्रण में नियोजित किया गया था। वे दृश्य जिन पर प्रतिदिन आंखें टिकी थी, वे सभी किसी आध्यात्मिक सत्य से जुड़े थे। इसलिए प्रकृति को गुरु के दृष्टांतों से अलंकृत किया जाता है। अपनी सेवकाई के पहले भाग में मसीह ने लोगों से इतने सादे शब्दों में बात की थी कि उनके सभी श्रोताओं को शायद सच्चाई का सामना करना पड़ा जो उन्हें उद्धार के लिए बुद्धिमान बना देगा। लेकिन कई दिलों में सच्चाई ने कोई जड़ नहीं ली थी और यह जल्दी से दूर हो गया था। इसलिए मैं उनसे दृष्टांतों में बात करता हूं, उन्होंने कहा, क्योंकि वे देख रहे हैं और वे जो सुनते हैं और न ही समझते हैं। इस कारण लोगों का हृदय स्थूल है और उनके कान सुनने में सुस्त है और उनकी आंखें बंद हो गई हैं। मत्ती 13 आयत 13 से 15। यीशु ने जांच को जगाना चाहा। उन्होंने लापरवाही को जगाने और दिल पर सच्चाई को प्रभावित करने की कोशिश की। दृष्टांत शिक्षण लोकप्रिय था और न केवल यहूदियों बल्कि अन्य राष्ट्रों के लोगों के सम्मान और ध्यान को निर्देशित किया। निर्देश का कोई अधिक प्रभावी तरीका वह नियोजित नहीं कर सकता था। यदि उनके श्रोताओं को दिव्य चीजों का ज्ञान था तो वे उनके शब्दों को समझ सकते थे, क्योंकि वो हमेशा उनकी ईमानदार जिज्ञासा को समझने के लिए तैयार था। फिर मसीह के पास ऐसी सच्चाइयां थीं जिन्हें लोग स्वीकार करने या समझने के लिए भी तैयार नहीं थे। इस कारण भी उन्होंने उन्हें दृष्टांतों में पढ़ा। उसकी शिक्षाओं को जीवन, अनुभव या प्रकृति के दश्यों से जोड़कर उन्होंने अपना ध्यान आकर्षित किया और उनके दिलों को प्रभावित किया। बाद में जैसा कि उन्होंने उन वस्तुओं को देखा, उन्होंने उसके पाठों को चित्रित किया। उन्होंने दिव्य शिक्षक के शब्दों को याद किया। पवित्र आत्मा के लिए, खुले मन के लिए उद्धारकर्ता के शिक्षण का महत्व अधिक से अधिक प्रकट हुआ। रहस्य स्पष्ट हो गए और जिसे समझ पाना कठिन था वह स्पष्ट हो गया। यीशु ने हर दिल को एक मौका दिया। विभिन्न प्रकार के चित्रों का उपयोग करके उन्होंने न केवल सत्य को विभिन्न चरणों में प्रस्तुत किया बल्कि विभिन्न श्रोताओं से विनती की। उनकी रुचि उनके दैनिक जीवन के प्रवेश में खींची गई आकृतियों से थी। उद्धारकर्ता की बात सुनने वाला कोई भी महसूस नहीं कर सकता था कि वे उपेक्षित थे, भूल गए थे। सबसे पापी नम्र ने अपनी आवाज में एक शिक्षा दी जो उसे सहानुभूतिपूर्ण कोमलता में बोली। उसके पास दृष्टांतों में पढ़ाने का एक और कारण था। जो भीड़ उसके आसपास इकट्ठी होती थी, इनमें बहरूपिये, पुजारी और रब्बी, शास्त्री और बुजुर्ग हेरोडीमन और शासक, दुनिया प्रेमी, बड़े महत्वाकांक्षी पुरुष थे जो उनके चीजों से ऊपर थे, जो उनके खिलाफ कुछ आरोप लगाने के लिए वांछित थे। उनके जासूसों ने दिन रात उनके कदमों का अनुसरण किया, उनके होठों से कुछ ऐसा पकड़ा जो उनकी निंदा का कारण बने और हमेशा के लिए दुनिया को आकर्षित करने वाले व्यक्ति को चुप करा दिया। उद्धारकर्ता ने इन लोगों के चरित्र को समझा और उन्होंने इस तरह से सत्य को निर्धारित किया कि वे कुछ भी नहीं पा सके। जिसके द्वारा अपने मामलों को महासभा के सामने लाया जा सके। दृष्टांतों में उच्च पदों पर आसीन लोगों के पाखंड और दुष्ट कार्यों को झिड़क दिया और लाक्षणिक भाषा में ऐसा चरित्र काटने की सच्चाई का गला घोट दिया जो प्रत्यक्ष अवमानना में बोला गया था। उन्होंने उनके शब्दों को नहीं सुना होगा और तेजी से डाल दिया होगा। उनके सेवकाई उनके शब्दों को जब उन्होंने जासूसों को उकसाया तो उन्होंने सच्चाई को इतना स्पष्ट कर दिया कि त्रुटि प्रकट हो गई और दिल में ईमानदारी उनके सबक से प्रभावित हुई। ईश्वरीय ज्ञान, अनंत अनुग्रह ईश्वर की रचना की चीजों द्वारा सादे बन गए थे। प्रकृति और जीवन के अनुभवों के माध्यम से पुरुषों को ईश्वर के विषय में सिखाया गया था। दुनिया के निर्माण के बाद से उसकी अदृश्य चीजें उन माध्यम से माना जाता है जो बनाई जाती है, यहां तक कि उनकी चिरस्थायी शक्ति और दिव्यता। रोमियो 1:20। उद्धारकर्ता के दृष्टांत शिक्षण में इस बात का संकेत है कि उच्च शिक्षा क्या है। मसीह के विज्ञान की गहरी सच्चाइयों को पुरुषों के लिए खोला जा सकता है। हो सकता है कि उसने अनौपचारिक रहस्यों को जन्म दिया हो, जिसने कई शताब्दियों के परिश्रम की आवश्यकता होती है और खोज के लिए अध्ययन किया जाता है। उन्होंने वैज्ञानिक पंक्तियों में सुझाव दिए होंगे जो समय के करीब आने के लिए आविष्कार और प्रोत्साहन के लिए भोजन का खर्च उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि जिज्ञासा को शांत करने के लिए या सांसारिक महानता के लिए दरवाजे खोलकर मनुष्य की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं किया। अपने सभी उपदेशों में मसीह अनंत मन के संपर्क में मनुष्य के मन को लाया। उन्होंने लोगों को ईश्वर, उनके शब्द या उनके कार्यों के बारे में पुरुषों के सिद्धांतों का अध्ययन करने के लिए निर्देशित नहीं किया। उसने उन्हें अपने कामों में, अपने वचन में और अपनी भविष्यवाणियों के अनुसार उन्हें निहारना सिखाया। मसीह ने अमूर्त सिद्धांतों से व्यवहार नहीं किया, लेकिन उसमें जो चरित्र के विकास के लिए आवश्यक है, जो कि ईश्वर को जानने के लिए मनुष्य की क्षमता को बढ़ाएगा और अच्छा करने के लिए उसकी दक्षता में वृद्धि करेगा। उन्होंने उन सच्चाइयों के पुरुषों से बात की जो जीवन के आचरण से संबंधित है और जो अनंत काल तक धारण करते हैं। ये वो मसीह था जिसने इज़राइल की शिक्षा का निर्देशन किया था। प्रभु के आदेशों और अध्यादेशों के बारे में उन्होंने कहा, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुमको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहें, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच में टीके का काम दे, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। व्यवस्था विवरण 6:6-91। अपने स्वयं के शिक्षण में यीशु ने दिखाया कि इस आज्ञा को कैसा पूरा किया जाता है, परमेश्वर के राज्य के नियमों और सिद्धांतों को कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है ताकि उनकी सुंदरता और अनमोलता का पता चल सके। जब प्रभु इज़राइल को स्वयं के विशेष प्रतिनिधि बनने के लिए प्रशिक्षित कर रहे थे तो उन्होंने उन्हें पहाड़ियों की और घाटियों के बीच खर दिए। उनके गृह जीवन और उनकी धार्मिक सेवा में उन्हें प्रकृति और ईश्वर के शब्द के साथ निरंतर संपर्क में लाया गया। इसलिए मसीह ने अपने शिष्यों को झील के किनारे, पहाड़ी पर, खेतों और उपवनों में पढ़ाया, जहां वे प्रकृति की उन चीजों को देख सकते थे जिनके द्वारा उन्होंने उनकी शिक्षाओं का वर्णन किया था। और जैसा कि उन्होंने मसीह को सीखा, उन्होंने अपने काम में उनके साथ काम करने के लिए अपने ज्ञान का इस्तेमाल किया। इसलिए सृष्टि के माध्यम से हमें सृष्टिकर्ता से परिचित होना है। प्रकृति की पुस्तक एक महान सबक पुस्तक है जो पवित्र शास्त्र के संबंध में है, जिसे हम उसके चरित्र के बारे में दूसरों को सिखाने में उपयोग करते हैं और खोई हुई भेड़ों को ईश्वर के बाड़े में वापस भेज देते हैं। जैसे जैसे परमेश्वर के कार्यों का अध्ययन किया जाता है, पवित्र आत्मा मन में दृढ़ विश्वास प्रकट करता है। ये तर्क नहीं है जो कि तर्क पैदा करता है, लेकिन जब तक मन ईश्वर को जानने के अवाकारमय नहीं हो जाता, आंखें उसे देखने के लिए बहुत मंद हो जाती है, उसकी आवाज सुनने के लिए कान भी सुस्त हो जाते हैं। एक गहरा अर्थ समझ में आता है और लिखित शब्द की आध्यात्मिक हृदय पर प्रभाव डालते हैं। प्रकृति से प्रत्यक्ष पाठों में एक सरलता और पवित्रता है जो उन्हें उच्चतम मूल्य प्रदान करती है। सभी को इस स्रोत से प्राप्त होने वाले शिक्षण की आवश्यकता है। अपने आप में प्रकृति की सुंदरता आत्मा को पाप और सांसारिक आकर्षण से दूर करती है और पवित्रता शांति ईश्वर की ओर ले जाती है। बहुत बार छात्रों के दिमाग पर पुरुषों के सिद्धांतों और कथनों का कब्जा होता है, जिन्हें विज्ञान और दर्शन कहा जाता है। उन्हें प्रकृति के साथ निकट संपर्क में लाने की आवश्यकता है। उन्हें ये जानने दे कि सृजन और मसीहियत है। उन्हें आध्यात्मिक प्रकृति के सामंजस्य को देखना सिखाया जाए। जो कुछ भी उनकी आंखें देखती है या अपने हाथों को संभालती है, उन्हें चरित्र निर्माण में एक सबक दिया जाना चाहिए। इस प्रकार मानसिक शक्तियां लड़खड़ा जाएगी, चरित्र विकसित हो जाएगा, पूरा आनंदमय हो जाएगा। सब्बत के उद्देश्य के दृष्टांत शिक्षण में मसीह का उद्देश्य पाप की सीधी रेखा है। ईश्वर ने पुरुषों को उनकी रचनात्मक शक्ति का स्मारक दिया कि वे उनके हाथ के कामों में उन्हें समझे। सब्बत की बोली हमारे द्वारा बनाए गए उनके रचनाकार की महिमा का बखान करती है। ये इसलिए था क्योंकि उसने हमें ऐसा करने के लिए चाहा था कि यीशु प्राकृतिक वस्तुओं की सुंदरता के साथ अपने अनमोल सबक को बांधे। पवित्र आराम के दिन अन्य सभी दिनों के ऊपर हमें उन संदेशों का अध्ययन करना चाहिए जो परमेश्वर ने प्रकृति में हमारे लिए लिखे हैं। हमें उद्धारकर्ता के दृष्टांतों का अध्ययन करना चाहिए जहां उसने उन्हें बोला, खेतों और पेड़ों में, खुले आसमान के नीचे, घास और फूलों के बीच। जैसे जैसे हम प्रकृति के दिल के करीब आते हैं, मसीह अपनी उपस्थिति हमें वास्तविक बनाते हैं और हमारे दिल को शांति और प्यार से बोलते हैं। और मसीह ने अपने शिक्षण को न केवल आराम के दिन के साथ, परिश्रम के सप्ताह के साथ जोड़ा है। उसके पास ज्ञान है जो हल चलाता और बीज बोता है, एक जुताई में बोना और जोतना और फिर से भरना। वो हमें हृदय में अनुग्रह के अपने कार्य का दृष्टांत देखना सिखाता है। इसलिए उपयोगी श्रम और जीवन की हर संगति की हर पंक्ति में वो हमें दिव्य सत्य का पाठ खोजने की इच्छा रखता है। तब हमारा परिश्रम अब हमारा ध्यान आकर्षित नहीं करेगा और हमें ईश्वर को भूलने के लिए प्रेरित करेगा। ये हमें लगातार हमारे निर्माता और उद्धारक की याद दिलाता रहेगा। ईश्वर का विचार हमारे सभी घरेलू देखभाल लिए उसके चेहरे की महिमा फिर से प्रकृति के चेहरे पर आराम करेगी। हम कभी भी स्वर्गीय सत्य के नए पाठ सीख रहे हैं और उसकी पवित्रता की छवि में बढ़ रहे हैं। इस प्रकार हमें प्रभु की शिक्षा दी जानी चाहिए और जिस स्थान पर हमें बुलाया जाता है, हम ईश्वर के साथ रहते हैं। यशाया 54:13, 1 कुरिन्थियों 7:24।